ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरोत्तमं नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वती व्यासं
ततो जय मदीरये नष्टप्रायेषु अवद्रेषु
नष्टप्रायेषु
नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके
भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैश्चिके
भक्तिर्भवति नैश्चिके
मोक्षं कृते वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभिस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं शाग्रदातं स गणरघुनाथ नितन्तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादं स गणललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्द राधाकन्द नमस्तुते। सप्तकन्दन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मावनन्दाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरतिस नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्याद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मतवृंद, हम कल श्री चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा के पथ पर काशी में आगमन और वहां पर तपन मित्र चंद्रशेखर आदि भक्तों से मिलन और एक महाराष्ट्र विप्र के साथ मिलन की चर्चा कर रहे थे और वह महाराष्ट्र ब्राह्मण किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रभावित होकर वो प्रकाशानंद सरस्वती की सभा में गया है और वहां चैतन्य महाप्रभु के गुणों का वर्णन किया है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो कि मायावादी सन्यासियों में प्रधान थे तो उन्होंने इस सभा में चैतन्य महाप्रभु की निंदा की और उन्होंने कहा कि ये सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, ये चैतन्य जो है ये नाम मात्र सन्यासी हैं किंतु महा इंद्रजाली अर्थात ये जादूगर महा जादूगर हैं और काशी पूरे ना बिकावे तार भाव काली, किंतु ये काशी में आया है तो इसलिए उसकी भावकाली उसके भाव यहाँ काशीपुर में बिकेगा अर्थात यहाँ कोई ग्रहण नहीं करेगा। वो जिस प्रकार भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको काशी में बनारस में कोई ग्रहण नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सब लोग वेदांत दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए भाव को प्रेम को यहाँ कोई ग्रहण नहीं करेगा। वेदांत श्रवण करो ना जाइए तार पास उच्चृंखल लोक संगे दुई लोक ना। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उस सभा में सब लोगों को ये आदेश दिया कि कोई उस चैतन्य के पास मत जाना क्योंकि जो लोग उच्चृंखल लोक होते हैं उनका अनुसरण करने से दोनों लोग नाश हो जाता है। तो कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती ने सबको यही कहा कि तुम लोग यहीं पर वेदांत श्रवण करो किंतु चैतन्य के पास मत जाओ क्योंकि वो उच्चृंखल है। वो चैतन्य महाप्रभु को परोक्ष से उच्चृंखल कह रहा है। उच्चृंखल उन लोगों को कहा जाता है जो शास्त्र विधियों का पालन नहीं करते हैं। यंग शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारक न सिद्धि अवाप्नोति न सुखं न परांगति। तो जो लोग शास्त्र विधि का अनुसरण नहीं करते हैं और मनमाने ढंग से आचरण करते हैं तो उन लोगों को जीवन में न तो सिद्धि प्राप्त होती है न सुख प्राप्त होता है न परम गति प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार आचरण नहीं करते हैं उन लोगों का यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाता है। ना तो इस लोक में वो सुख प्राप्त करते हैं और परलोक मृत्यु के पश्चात ये लोग इस सुख को या परम गति को प्राप्त नहीं करते वो नर्क गति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा तो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण जो जाके प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु के संबंध में बताया था तो ये सब सुन रहा था वहां बैठकर। तो जब उन्होंने देखा कि प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं तो तुरंत उसने क्या किया ये तो सुनी से ही विप्र महा दुख फैला तो बहुत दुखी हुए वो महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण थे और चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकृष्ट हुए थे तो बहुत दुखी हुए और कृष्ण कृष्ण कही तहां हैते उठी गला तो बहुत दुखी होकर कान बंद करके कृष्ण कृष्ण कह के वहां से उठकर चले गए उस सभा। तो शास्त्र में ये बताया गया है कि वस्तुतः भगवान की निंदा और भक्तों की निंदा का श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि कोई भगवान की निंदा करता है या उनके भक्तों की निंदा करता है और कोई व्यक्ति उस निंदा का श्रवण करता है तो उस अपराध के वो भी भागी होता है। श्रवण करने वाला जो निंदा कर रहा है वो तो अपराधी है किंतु जो उसके मुख से निंदा का श्रवण करता है वो भी अपराधी बन जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की निंदा और भक्तों की निंदा कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, न तो स्वयं निंदा करनी चाहिए भक्तों की या भगवान की, और किसी के मुख से भी श्रवण नहीं करना चाहिए, इससे अपराध होता है। तो उस स्थिति में शास्त्रों में तीन प्रकार के कार्य करने के लिए बताया गया है। यदि कोई भगवान की निंदा करता है तो पहले व्यक्ति उस निंदा को श्रवण न करके उसको तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा उसके मत को परिवर्तन करना चाहिए। यदि व्यक्ति अज्ञानतावश भगवान या भक्तों की निंदा कर रहा है और व्यक्ति यदि समर्थ है जो सुन रहा है, तो उसको तर्क देकर युक्ति से उसको भगवान की निंदा नहीं करने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए या भक्तों की निंदा नहीं करने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं कर सकता तो और एक विधि है कि वो स्वयं यदि समर्थ है उस व्यक्ति की जीवा काट दे और स्वयं आत्महत्या करे। और ऐसा यदि वो नहीं कर सकता तो तीसरी विधि है कि वो स्थान त्याग करके चले जाए अन्य स्थान में, वहां खड़े होकर भगवान या भक्तों की निंदा श्रवण नहीं करते। तो ये तीन प्रकार की विधि का अनुसरण किया जा सकता है जब कहीं भगवान और भक्तों की निंदा होती है। तो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण से उनकी निंदा का श्रवण कर रहा था, तो उस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने ये तीसरी विधि का पालन किया, वो कान बंद करके और निंदा श्रवण नहीं करें, कान बंद करके कृष्ण कृष्ण कहकर वहां से उठ के चल दिए महादुखी होकर मन मन। तो प्रभु दर्शन शुद्ध हया से तार मन, प्रभु आगे दुखी हया कहे विवरण। क्योंकि इस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के कारण उसका मन शुद्ध हो गया था, पवित्र हो गया था, तो इसलिए वो दुखी होकर चैतन्य महाप्रभु के पास चला गया। और चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर इस प्रकाशानंद सरस्वती का विवरण उनको प्रदान किया कि प्रकाशानंद सरस्वती कैसे उनकी निंदा कर रहा है। तो सुनी महाप्रभु तबे इस हासिला पुनरपि सही विप्र प्रभु रे पूछिला। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस महाराष्ट्र ब्राह्मण के मुख से अपनी निंदा का श्रवण किया तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित नहीं हुए। साधारण रूप से यदि किसी व्यक्ति की निंदा की जाती है और वो व्यक्ति उस निंदा का श्रवण करता है कि अमुक व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, तो वो तुरंत क्रोधित हो जाता है उसके ऊपर और उसकी निंदा करने लगता है तुरंत कि वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, या उसको कष्ट पहुंचाने के लिए व्यवस्था भी करता है। ये इस प्रकार प्रतिक्रियाशील हो जाता है साधारण व्यक्ति। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी निंदा का श्रवण किया तो वे प्रतिक्रियाशील नहीं हुए। यही भगवान का लक्षण है और भगवान के भक्तों का भी लक्षण है, ये क्रोधित नहीं होते हैं अपनी निंदा का श्रवण करते हैं, या उस व्यक्ति का व्यक्ति को कष्ट इस प्रकार कष्ट पहुंचाया जाए या उसकी निंदा बदले में करें, इस प्रकार भगवान या भक्त नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जब उन्होंने अपनी निंदा का श्रवण किया तो वह हंसने लगे, इज्जत हास स्मित हास्य कुछ नहीं बोले, या प्रकाशानंद सरस्वती की निंदा भी नहीं किए और न तो क्रोधित। पुनरपि सही विप्र प्रभु ने पूछिला। तो जब इस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल हंस रहे हैं, क्रोधित भी नहीं हो रहे हैं या प्रकाशानंद सरस्वती की निंदा भी नहीं कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने फिर चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया। तो ये प्रश्न क्या था कि तारो आगे जबे आमे तुम्हारो नाम ले लो ସେଇ ତୁମର ନାମ ଜାଣେ ଆପଣ କହିଲ ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୈନେ ଜବ ଆପକା ନାମ ଲିଆ ଉସକେ ସାମନେ ତୋ ଉସ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନେ କହା କି ହଁ ହମ ଜାଣତେ ହୁଁ ଉସ ଚୈତନ୍ୟ ଆପକା ନାମ ଲେକର କହା କି ଜାଣତା ହେ ତୁମାର ଦୋଷ କହିତେ କରେ ନାମେର ଉଚ୍ଚାର ଆଉ ତୁମାରି ନିନ୍ଦା କରନେ କେ ଲିଏ ଓ ଆପକା ନାମ ଲେ ରହା ଥା ଅନ୍ୟଥା ଓ ଆପକା ନାମ ଲେନା ବି ନାହିଁ ଚାହତା ଥା କିନ୍ତୁ ଆପକେ ନିନ୍ଦା କରନେ କେ ଲିଏ ବାର ବାର ଆପକା ନାମ ଲେ ରହା ଥା କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ କରି କହେ ତିନ ବାର ତୋ ଆପକା ନାମ ଲେତେ ହୁଏ ଓ ତିନ ବାର ଚୈତନ୍ୟ ଶବ୍ଦ କା ଉଚ୍ଚାରଣ କିଏ କିନ୍ତୁ ତିନ ବାରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନା ଆଇଲ ତାର ମୁଖ ତିନ ବାର ଉସନେ ଆପକା ନାମ ଲିଆ କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଶବ୍ଦ କା ଉଚ୍ଚାରଣ କିଏ ଆପକେ ନାମ ମତଲବ ଆପକା ଆଧା ନାମ କା ଉଚ୍ଚାରଣ କିଏ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ କା ଉଚ୍ଚାରଣ ତିନ ବାର ମେ କିଛି ଏକ ବାର ବି ନାହିଁ କିଏ ଜବକି ଆପକା ନାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ହେ ତ ଉସନେ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ତ ଲିଆ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ନହିଁ ଲିଆ ତିନୋ ବାର तो इसका क्या कारण है क्यों उसने चैतन्य नाम लिया कृष्ण कृष्ण का नाम नहीं लिया अवज्ञा से नाम लय सुनी पाई दुखी और फिर उसने जब चैतन्य नाम का उच्चारण किया तो अवज्ञा पूर्वक किया सम्मान के साथ आपके नाम का उच्चारण नहीं किया उसने अवज्ञा पूर्वक अवहेलना पूर्वक आपके नाम का उच्चारण किया इसलिए मेरे मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है तो यार कारण मोरे कह कृपा करी तुमा देखी मुख मोर बोले कृष्ण हरि तो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से कह रहा कि मैं जब आपके दर्शन करता हूं आपके दर्शन मात्र से मेरे मुख से अपने आप कृष्ण नाम उच्चारित हो जाता है हरि का नाम उच्चारित हो जाता है तो इसका क्या कारण है कि ये आपका नाम सुनने के उपरांत भी और वो जानता भी है आपको कह रहा है प्रकाशानंद सरस्वती किंतु वो आपका नाम तो चैतन्य के रूप में उच्चारित किया किंतु श्रीकृष्ण का नाम उसने क्यों उच्चारण नहीं किया जबकि आपका नाम श्रीकृष्ण चैतन्य है और उसको यदि भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण वो नहीं भी करता है तो कम से कम आपका तो पूरा नाम उच्चारण करना चाहिए श्रीकृष्ण चैतन्य कहना चाहिए किंतु श्रीकृष्ण को छोड़कर उसने केवल चैतन्य का नाम लिया इसका कारण क्या है यद्यपि मैं अपने आप कृष्ण नाम लेने लगता हूँ आपके दर्शन मात्र से फिर भी वो आपका नाम का पूरा उच्चारण नहीं करता प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराध ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि वस्तु तो जो मायावादी होते हैं कारण प्रकाशानंद सरस्वती ये मायावादी सन्यासी थे तो कहते हैं कि ये जो मायावादी होते हैं ये कृष्ण के चरण में अपराध करते हैं ये कृष्ण है अपराध ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि और सदा सर्वदा ये लोग ब्रह्म शब्द का उच्चारण करते हैं चैतन्य शब्द का उच्चारण करते हैं आत्मा शब्द का उच्चारण करते हैं ये सदा सर्वदा इन शब्दों का उच्चारण करते हैं मायावादी लोग किंतु कभी भी कृष्ण का नाम नहीं लेते क्योंकि ये अपराधी हैं कृष्ण के चरण ये भगवान कृष्ण को भौतिक मानते हैं और सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं और जब भगवान अवतरित होते हैं तो भौतिक शरीर मनुष्य जैसा शरीर ग्रहण करते हैं तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवदानंति मां मूढ़ा मानसिं तनुमास्थितम परम भाव अदानंतो मम भूत महेश्वर तो भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति होते हैं तो मैं जब नर रूप में मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ मनुष्य रूप ग्रहण करता हूँ तो ये मूर्ख व्यक्ति मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानता कि मैं समस्त लोगों का ईश्वर हूँ भगवान हूँ और मेरा ये दिव्य शरीर है इसको ये मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता ये लोग मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं। तो इस प्रकार ये मायावतीगण भी भगवान कृष्ण को सामान्य मनुष्य और उनका रूप भौतिक रूप मानते हैं, इसलिए कृष्ण के चरण में ये अपराध करते हैं, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं समझते, किंतु अपने आप को महापंडित महाविद्वान समझते हैं। किंतु इतनी सी बात नहीं जानते हैं कि कृष्ण परम पुरुष भगवान और उनका शरीर दिव्य शरीर है। तो वो रूप को तो नकारते रहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, उनका हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है। तो इसी के कारण वे भगवान कृष्ण के चरण में अपराध करते हैं, जो भगवान का स्वरूप दिव्य है। और ऐसा कहा गया है कि प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरं अचिंत गुण स्वरूपं गोविंदम आदि पुरुषम तमाहं भजा। जो भगवान का रूप श्याम सुंदर रूप है, तो इस श्याम सुंदर रूप को मायावादी लोग अस्वीकार करते हैं। क्यों अस्वीकार करते हैं? क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण के चरण में अपराधी हैं, इसलिए कृष्ण प्रेम कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता उनके हृदय में, इसलिए भगवान कृष्ण को कभी भी नहीं समझ सकते। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अतएव तार मुखे ना ऐसे कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वित समान। ये लोग कृष्ण के चरण में अपराध करने के कारण उनके मुख में कृष्ण का नाम नहीं आता। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जो लोग पापाचारी हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, उनके मुख से कृष्ण नाम उच्चारित नहीं होता है, भगवान का नाम उच्चारित नहीं होता। ये लोग न तो भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं और न सुन सकते हैं, भगवान का नाम भी अलग सुन नहीं सकते। कभी कभी देखा जाता है कि भक्त लोग जब नगर में जाते हैं भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जब भगवान का नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनते हैं कान बंद कर देते हैं, तो सुन नहीं सकते। तो इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है कि ये लोग भगवान का नाम न तो उच्चारण कर सकते हैं न सुन सकते हैं, भगवान के चरण में अपराध होने के कारण ये लोग ऐसा करते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप द्वित समान। वस्तुतः भगवान कृष्ण का स्वरूप और उनका नाम, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। नाम नामी अभिन्न, जिस प्रकार हम और हमारे नाम में अंतर है। जब हमारा जन्म हुआ था उस समय हमारा कोई नाम नहीं था, किंतु हम थे। किंतु जन्म होने के पश्चात कुछ काल के बाद हमारा नामकरण किया जाता, नाम दिया जाता, तब से हम सोचने लगते हैं कि हम अमुक व्यक्ति हैं। यदि कोई किसी को पूछे कि आप कौन हैं, तो तुरंत हम अपना नाम बता देते हैं। किंतु वस्तुतः जन्म के समय हमारा यह नाम नहीं था, तो उस समय हमारा नाम क्या था हमें पता नहीं। तो ये हम और हमारा नाम ये भिन्न है, और उस नाम को हम बदल भी सकते हैं। जो नाम हमें दिया गया है हम उसको बदल भी सकते हैं। लोग बदलते रहते हैं एफिडेविट करके, नाम बदल देते हैं। इसका अर्थ है कि नाम बदलता रहता है लेकिन हम नहीं बदलते। तो इसका अर्थ है कि हमसे हमारा नाम भिन्न है, हम वो नाम नहीं है, उससे अलग। किंतु भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। नाम नामी अभिन्न, भगवान का नाम और भगवान के रूप, इसमें कोई भेद नहीं है। तो ये भगवान का नाम उच्चारण मात्र से भगवान वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति को यहां बुला रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे पास नहीं है, तो वो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम उसको बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं। किंतु यदि हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं भगवान कृष्ण को पुकारते हैं तो भगवान कृष्ण आकर उपस्थित हो सकते हैं। और पद्म पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठ योगिनं हृदयेन च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरा नाम कीर्तन करते हैं यश गान करते हैं मैं वहीं पर उपस्थित होता हूं। न तो मैं वैकुंठ में हूं या योगियों के हृदय में हूं, जहां मेरा भक्तगण मेरा नाम कीर्तन करते हैं यश गान करते हैं मैं वहीं पर उपस्थित होता हूं। तो जब हम नाम संकीर्तन करते हैं तो भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं उस स्थान पर। तो जिस समय उद्धव जी ने नाम संकीर्तन किया था वृंदावन में कुसुम सरोवर के तट पर, तो भगवान वहां प्रकट हो गए। तो इस प्रकार भगवान प्रकट हो जाते हैं क्योंकि उनका नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीनों भेद नहीं तीनों चिदानंद रूप। तो इसलिए भगवान का नाम, भगवान का विग्रह मूर्ति और भगवान का स्वरूप, इसमें कोई अंतर नहीं है। कभी कभी लोग मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए तो पूछते हैं कि ये मूर्ति किस धातु से बनी है या किस शिला से बनी है। तो वहां पर वो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, धातु शिला का दर्शन करते हैं। क्योंकि जब भी भगवान को भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, प्रतिष्ठा होती है, तो मंत्रोच्चारण के माध्यम से भगवान को आह्वान किया जाता है उस विग्रह में प्रवेश करने के लिए। वही मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव कहा जाता है। तो भगवान को आह्वान किया जाता है मंत्र के बल से, मंत्र के द्वारा भगवान को आह्वान किया जाता है कि उस विग्रह में प्रवेश करें और हमारी पूजा को ग्रहण करें। तो भगवान जब सर्वव्यापी हैं, हर अणु परमाणु में रह सकते हैं, तो अपनी मूर्ति में भी वो प्रवेश कर सकते हैं। और जब भगवान प्रवेश कर जाते हैं उस मूर्ति में, तब फिर वो साधारण शिला या धातु नहीं रहता, वो विग्रह वो दिव्य बन जाता है, क्योंकि भगवान वहां प्रविष्ट है। और हम विग्रह के रूप में भगवान की पूजा और भगवान की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है, हमारे पास हमारी जो इंद्रियां हैं ये सब भौतिक इंद्रियां हैं। तो अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। भगवान कृष्ण के नाम रूप लीला गुण आदि हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा ये ग्राह्य नहीं हो सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा केवल हम भौतिक वस्तु को ही देख सकते हैं, भौतिक वस्तु का ही अनुभव कर सकते हैं। किंतु भगवान दिव्य है इसलिए उनका अनुभव हमें नहीं होता। अतः भगवान कृपा करके हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए, हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए विग्रह के रूप में प्रकाशित होते हैं, मूर्ति के रूप में प्रकाशित होते हैं। अतः हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका नाम कीर्तन उनके सामने कर सकते हैं, इस प्रकार हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, विग्रह जो है, मूर्ति जो है भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार भौतिक व्यक्तियों पर भगवान कृपा करके उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो मूर्ति है ये भगवान से अभिन्न है। तो हम जब मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शिला की मूर्ति है या धातु की मूर्ति, हमें तो ये सोचना चाहिए कि ये साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। तो इस भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। तो ये विधि है कि भगवान, उनके स्वरूप और उनका नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है।